نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں ایک بار پھر اتنی اچھی جگہ پہ ملنے کا موقع دیا آج ہم جس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے وہ ہے اپنی ذہانت کو پرکھیے یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل انٹیلیجنسز ہمارے کلچر میں ایک جملہ بولا جاتا ہے میرا بچہ بڑا ذہین ہے میری بیٹی بڑی ذہین ہے میرے اسٹوڈنٹس بڑے ذہین ہیں کوئی کہتا ہے میرا ٹیچر بڑا ذہین ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو لفظ ذہین کہنے سے ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک فیلڈ میں بہت اچھے ہوتے ہیں دوسرے میں بالکل ناکام ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی گلوکار ہے وہ ایک اچھا سنگر ہے اپنی زبان میں بٹ وہ ایک اچھا شوہر نہیں ثابت ہوتا بعض لوگ ایز آ ہسبینڈ سکسیزفل نہیں ہوتے بٹ ایز آ فادر بہت سکسیزفل ہوتے ہیں ہے نا یہ چیز بعض لوگ ہیں جب تک جاب کرتے رہے بہت سکسیزفل رہے لیکن جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تو پہلے ہی سال میں اتنا نقصان کیا کہ دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی سارے زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ نکل گئی تو سم تھنگ از رانگ اور یہ جو ملٹیپل انٹیلیجنس کا کام ہے یہ آج ایک بہت بڑی سائنس بن چکا ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن سب سے پہلے جس شخص نے اس پہ بات کی اس کو ہارورڈ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ مینٹلی ریٹارڈ بچوں کو اپنے پاس رکھا اور ان کو آبزرو کیا اور اس آبزرویشن کے نتیجے میں جو چیزیں اس پہ کھلی وہ کیا تھی کہ ایون دے آر مینٹلی ریٹارڈ بٹ ایوری ون ہیز سم ڈفرینٹ کوالٹی مثلاً کچھ ڈیسنٹ بہت ہے بعض ایسے ہیں کہ جو موومنٹ کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جیسے مثال ہے کہ ذہن تو کام نہیں کرتا لیکن باڈی وائز بہت ایکٹیو ہے پھر اسی طرح اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ اچھا سانگ گا لیتے ہیں کسی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ انٹرمنگلنگ ہے اس سے اس کے ذہن میں آیا تھا کہ آل دور دے آر مینٹلی ریڈارڈ بٹ ان سب کے اندر پھر کچھ نہ کچھ خوبیاں کچھ فرق ہے تو بہرحال اس شخص نے اس پہ کام کیا اور اس کی بک بہت معروف ہے آپ بھی بعد میں جا کر دیکھیے آج اینڈ پہ میں آپ کو کچھ سلائڈ شیئر کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص نے ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نظریہ اور تھیری جو تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا اور اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تھوڑے سے مراجعہ کے 400-500 سال پیچھے تو لوگ کسی کی خوش قسمتی اور بدبختی کو کس چیز سے جوڑتے تھے سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ کب پیدا ہوا اچھا جب پیدا ہوا تو اس وقت ستارے گردش میں تھے کہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کسی خاص دن میں کوئی پیدا ہو جاتا کہتے یہ بڑا بابرکت دن تھا اس دن پیدا ہو گیا یعنی ہر دور میں لوگوں نے اس چیز کو سوچا کہ کسی انسان کی کامیابی یا سکسیس جو ہے یہ یا تو اس کے پیدا ہونے کے دن سے لگی ہوئی ہے یا ستاروں سے لگی ہوئی ہے اور عموماً لوگوں نے جا کر جوتشیوں سے اور نجومیوں سے پوچھا کہ اچھا بتائیں ہمارا مستقبل کیسا ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں حالانکہ اسلام ان میں سے کسی بھی کی اجازت نہیں دیتا پھر اسی طرح اس فیلڈ میں جس پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے تین سائیکولوجسٹ تھے انہوں نے 10 سال تک کام کیا سٹوری کا خلاصہ سنا دیتی ہوں یعنی 1970 سے لے کے 1980 تک 10 سال انہوں نے کچھ بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھا جو انہوں نے بات شروع کی تھی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ انہوں نے اسکول کے کچھ بچوں کو ایک جگہ جمع کیا ان کے سامنے انہوں نے ڈفرینٹ کینڈیز رکھی اور انہیں کہا کہ ایک کینڈی تم نے ایک مہینے کے بعد کھانی ہے دوسری دوسرے مہینے میں تیسری تیسرے مہینے میں انڈرسٹینڈ کر لیجئے یہ انسٹرکشنز دے کے یہ باہر چلے گئے دور سے کیمرے فٹ کر کے انہوں نے ان بچوں کے بیہیویئر کو دیکھا یا پھر خلاصہ یہ کہ بعد میں پوچھا تو میجورٹی آف کڈس نے کیا کیا थोड़ी देर सब्र किया कि अच्छा अभी वेट करते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, आधा घंटा सब्र किया, लेकिन मोस्ट ऑफ देम 1 घंटे के बाद एक कैंडी खा गए। अब एक खाया तो उनको एहसास हुआ कि हमने तो जल्दी खा ली है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा और सब्र किया तो कुछ ने 1 हफ्ते के बाद दूसरी भी खा ली। बहुत थोड़े लोग थे जो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हुए उसी टाइम स्पैम के साथ उस कैंडीज को खाने लगे। जब ये सारी कहानी खुली तो उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और जब रिपोर्ट सामने आई तो वो सारी चीज़ें लिख ली। कुछ जो थे वो फौरन हाइपर हुए, यानी उन्होंने बस कैंडीज की मोहब्बत में टीचर की बात को भुला दिया। सेकंड जो थे वो थोड़े से लेट उस बात को भूले, लेकिन जो तीसरे थे, जो बहुत फ्यू थे, उन्होंने उस पर अमल किया। अब उन्होंने क्या किया, 10 साल तक उन बच्चों को ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि उसी स्कूल के बच्चे थे। जो उस पूरी मॉनिटरिंग के बाद सामने चीज़ आई थी वो क्या थी कि जिन बच्चों ने फौरन ही ये सब कुछ खा लिया, दे बिकेम क्रिमिनल्स। उनके अंदर पेशेंस की कमी थी, सब्र की कमी थी, वो इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते थे और वो ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सके। जो दूसरे थे जिन्होंने कुछ अरसा सब्र किया और उनके हुक्म को याद रखा, तो दे बिकेम जस्ट लाइक आप कह लीजिए कि दरमियाने दर्जे के बच्चे साबित हुए, जैसे आम लोग होते हैं जिसको आप कहें कि एवरेज माइंड। बट वो तीसरा ग्रोथ जिन्होंने उसकी बात को सुनकर समझा, गौर किया, तो कहते हैं कि वो स्पेशलिस्ट बने, वो जिस फील्ड में गए वो आगे गए। वहाँ से फिर ये सारी थ्योरी, जो आज थोड़ा सा खुलासा रखूँगी, सारे की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। फिर आप देखिए कि आपको एक और भी बात बताऊं कि इस मौजू को सुनने और समझने की ज़रूरत क्यों है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने पैदा होते बच्चों के बॉडी का विटामिंस और उनके अंदर कोई जर्म चला गया है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के एक एक मूवमेंट को वो नज़र में रखते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है इंटेलिजेंस की, जहाँ आपने बच्चे के रुझानात को परखने की ज़रूरत आती है, उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आज हमारी अपनी सोसाइटी में देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए सही लाइन चूज़ नहीं की। बात समझ गए आप, इम्पोर्टेंस देखिए। अगर आज मैं आपको जो 9 different kinds ऑफ इंटेलिजेंस बताऊंगी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे कि आप खुद किस में आती हैं, आपके हस्बैंड किस में, आपके बच्चे किस में हैं। अगर हमें इसका थोड़ा सा शुरू से ही इल्म दे दिया जाए तो सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोफेशन चूज़ करें। क्या हमारे अपने मिलने जुलने वालों में ऐसे कई लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी किसी ख्वाहिश के तहत अपने बच्चों को हाफिज़ बनाना शुरू कर दिया और 8वें 10वें पारे तक तो वो डांट खा खा के पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने कभी डोंट वॉन्ट टू बी, और फिर गुस्से में इतना भूले कि सब छोड़ दिया ना। इसी तरह से क्या आप अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में ऐसे लोगों को नहीं जानते कि जो सिर्फ माँ बाप के कहने पे मेडिकल फील्ड में चले गए, मारे बांधे उसको पूरा भी कर लिया, बट दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। यानी आज हमारे अमूमन जहनों में ये डाला जाता है, माँ की ये ख्वाहिश है, अब्बू की ये ख्वाहिश है, दादी का ये ख्वाब था, दादा का ये ख्वाब था। इट्स रॉन्ग डिसीजन। फिर एक और एंगल से ज़रा से इसकी अहमियत को समझिए, रिश्ते करते हुए आज कितने रिश्ते नाकाम हैं। दूर से सब सही लगता है, शादी के बाद पता चलता है नहीं, माइंडसेट नहीं मिल रहा, क्लिक नहीं कर रहा, साथ रह के पता चला कि नहीं बनती, हालांकि अपेरेंटली दोनों घरों में सब ठीक था, पैसा भी था, दौलत, यानी जो एक ज़ाहरी किस्म की चीज़ें थी वो सारी थी। बाद में पता चलता है लड़की लड़के का मिजाज नहीं मिला, तो ये मिजाज क्यों नहीं मिला, अब एक नया क्राइटेरिया रिश्ते करने का रख लें, पहले ही बड़े हैं, रिश्ते पहले ही नहीं होते, अब एक और रख लें कि लड़के की इंटेलिजेंस देखिए कि क्या वो इंटेलिजेंस लड़की की इंटेलिजेंस से मैचिंग होती है कि नहीं। बात समझ गया, देखिए ना, लोग सबसे पहले तो रिश्ते करते वक्त ज़ात बिरादरी से कॉन्शियस होते हैं, ख़ानदान है, बिरादरी है, फिर शक्लो सूरत है, फिर रंग है, फिर सब कुछ है। मैं ये बात जो कह रही हूँ कि इसमें एक ये जो इजाफा होगा, इस इजाफे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो पेरेंट्स इस वक्त एज आ पेरेंट्स हैं, या लड़का और लड़की जो अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, अगर वो खुद इस सारे नॉलेज को जानते होंगे, याद रखिए हमेशा लाइक माइंडेड लोग वो हमेशा सेम कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस के होते हैं। आप नहीं कहते मेरी फ्रेंड, इससे मेरी बहुत सेटिंग है। आप अपनी फ्रेंड्स को सोचिए, आपका मे बी सिस्टरहुड 50 लोगों का होगा इस शहर में, आप 50 को जानती हैं, कोई एक ऐसी क्यों है कि जिनके आगे जाके आपका दिल ही खुल जाता है, जिनके आगे आप बैठती हैं तो आपका दिल करता है कि मैं इनसे गाइडलाइन लूँ, वो आपका इंटेलेक्ट मिल रहा होता है। बस समझ गए। कई बेजोड़ शादियां हमारे अपने मुल्कों में हुई, हमारे अपने खानदानों में हुई। पढ़े लिखे अक्लमंद किस्म के मर्द थे, बिल्कुल सीधी गांव से आई हुई ऐसी खातून के जिसके अंदर कोई बारीकी और नज़ाकत नाम की चीज़ नहीं, उनके साथ ब्याह दिया। अब उन्होंने तो माँ बाप के नाम पे और इज्जत पे जिंदगी गुजार दी, बट समटाइम वो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। आप अपने ऊपर ले लीजिए चले इसकी इंपॉर्टेंस। आप कभी कोई एक तजुर्बा करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर आप किसी और मैदान में कूदते हैं, फिर आप उसमें से खुद ही निकाल दिया जाता है कि नहीं भैया आप छोड़ दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे, है ना। अगर हमें खुद अपने बारे में पता होना कि मैं कैसी अकलमंद हूँ या मैं किस दर्जे की अकलमंद हूँ, तो आई एम श्योर कि हम अपनी ज़िंदगी में मोर सक्सेसफुल रोल अदा कर सकते हैं। बीइंग अ मदर, आप माँ हैं, आपके चार बच्चे हैं, चारों बच्चे इंटेलेक्चुअली डिफरेंट बच्चे हैं। आप अगर खुद इंटेलिजेंट हैं और आप इस इल्म को लेती हैं तो आप फ़ौरन पढ़ लेंगे, अच्छा इस वन नंबर के इंटेलिजेंट को कैसे डील करना है, दूसरे को कैसे करना है, तीसरे को कैसे करना है। तो किस्सा मुख्तसर ये बहुत अहम चीज़ है। और आखिर में फिर इसको मैं जोड़ दूंगी आपके हमारे दीन के काम से, इस्लाम से, दावा वर्क से। जब तक आप किसी के इंटेलेक्ट को नहीं समझते आप उसको दावा नहीं दे सकते। यानी मेरी तो हर स्पीच का एंड या तो आपको बच्चों की तरबियत दिखेगा या लोगों को कुरान और दीन और इस्लाम से जोड़ना है। आपके इर्द गिर्द 20-25 लोग हैं नॉन मुस्लिम्स और आप एक रट्टा रटाया जुमला सीख के जाते हैं, अच्छा दावा में ये बोलना है। नो, यू शुड हैव द नॉलेज। थोड़ी देर बात करने से, उसके हॉबीज पूछने से, सामने जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसका अंदर सामने आता है, आप उसके साथ वही स्ट्रेटेजी यूज़ करें। जब डॉक्टर के पास कोई जाता है और डॉक्टर उसका एकदम इलाज तो नहीं शुरू कर देता, टाइम लगता है ना, तो सारी बात का खुलासा ये है कि ये एक बहुत बेनिफिशियल नॉलेज है। मैं जस्ट सिर्फ आपको इसका गो थ्रू कराऊंगी, तो आइए ज़रा 1, 2, 3 करके 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस नोट करते हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर जो नहीं नोट कर सकेंगे डोंट वरी, क्योंकि एंड पे आपको पावर पॉइंट दिखाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत कुछ वैसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा और बाद में आप उसके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस है नंबर 1, वो क्या है, नेचर स्मार्ट पीपल, जो फितरत के नाते से बहुत स्मार्ट होते हैं। मसलन वो बहुत ज़्यादा सैर व तफरीक को पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो फितरत से करीब होते हैं, खेतों में काम करते हैं बहुत खुश रहते हैं, पहाड़ों पर गौर व फिक्र करते हैं। आप कह लीजिए कि फितरत या कायनात या नेचर से उनका वही रिश्ता होता है जो अपने भाई बहनों का होता है। इन नफ़ी खल के समावाती वलर्दि वख्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि लआयातिल अलबाब। मसलन आप अब अपने इर्द गिर्द अपने साथियों में ज़रूर कोई ना कोई याद करेंगे इस नाम को सुनकर कि कुछ लोगों को नेचर की छोटी छोटी चीज़ें बहुत नज़र आने लगती हैं। मसलन आप देखिए कि आजकल हर तरफ वेदर चेंज हो रहा है ना, सर्दी से गर्मी में आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि पहले नॉर्वे में हमारे इर्द गिर्द बहुत बर्फ़ थी, तो जब बाहर गए अब हर बंदे ही बर्फ़ देखता है, बट वो बर्फ़ को देखकर ऐसे समझते हैं कि ये चांदी की ज़मीन है, ओके जन्नत में भी ऐसे ही सफ़ेद ज़मीन होगी। जब अल्लाह यहाँ बर्फ़ वाली सफ़ेद ज़मीन बना सकता है तो दैट मीन कि वो जन्नत में भी चांदी की ज़मीन बना देगा। बात समझ गए। उनका इंटेलेक्ट गौर व फिक्र वाला होता है। फिर वो जब सफ़ेद बर्फ़ पे चलते हैं तो उसके अंदर उनके फुटस्टेप बन जाते हैं, वो हर फुटस्टेप के ऊपर सोचते हैं कि जिस तरह यहाँ बर्फ़ पे मेरे कदमों के निशान बन रहे हैं तो इसी तरह माँ कद्दम हुआ आसार हूँ। सूरत यासीन आयत 12 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान ने आगे भेजा जो पीछे छोड़ा, यानी ये हर वक्त सोचते हैं, ये बहुत टॉकेटिव नहीं होते, ये हर वक्त टेलीफोन कॉल्स अटेंड नहीं करते, ये जब बाहर जाते हैं तो इनकी ज़्यादा ये फिक्र नहीं होती हम क्या खाएंगे, हम किधर जाएंगे, हम किस म्यूज़ियम में जाएंगे, ये बाहर की दुनिया के शहर में खोए होते हैं। इनका दिल करता है कि कोई हमें बुलाए ना और हम पहाड़ों के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुने, हम चश्मों को देखें, और जो ही ये हिली स्टेशंस में जाएंगे तो वहाँ से वो जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं या चश्मों से पानी निकलता है उसको देखकर सोचना शुरू कर देते हैं, हाँ इसी तरह हमारी आंखों से भी पानी निकलता है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल्हिजारा। बात समझ गए। यानी इन लोगों को ऐसे कामों में मज़ा आता है। अब आप देखिए कि साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा टच करते हैं कि अगर आपको अपने अंदर ये फीलिंग आती है, अब हम खवातीन हैं, हमारा मोस्टली फील तो घर ही होता है, ठीक है, तो हम साथ साथ इसको देख लेते हैं कि अगर आप नेचुरलिस्ट हैं या आप नेचुरली इंटेलिजेंट हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी का स्पैम कैसा रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे मिजाज में चिड़चिड़ा बना जाता है, बाज़ दफ़ा हम बहुत वोकल हो जाते हैं, हम बाज़ दफ़ा बहुत लड़ाके लड़ाके हैं। आप मान लीजिए कि आप एक आज़ाद पंछी थी और 8 दिन से आप घर में बंद हैं, चाहे किसी बीमारी के नाम पे, चाहे आप मेहमानों की खातर के नाम पे या घर के कामों में, एक वक्त आएगा आप उलझ जाएंगी। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कई लोग सारी ज़िंदगी घर में रहते हैं, वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं बाहर देखने की, उनके अंदर ये सेंस नहीं होती, वो कहते हैं ट्यूबलाइट भी ऐसी है जैसे बाहर की लाइट है। हाँ, लेकिन जो नेचुरली स्मार्ट है ना, इनको क्या करना चाहिए कि दिन का कुछ हिस्सा आउटसाइड गुजारना चाहिए, दे शुड एक्सपोज टू नेचर। मसलन अगर बाहर घास पे नंगे पाँव थोड़ी देर फिर लेंगे तो इनके अंदर की वो जो फीलिंग्स है ना, उसको इतना सुकून मिलेगा कि फिर दिन में आराम से 2-3 घंटे ये घर के काम कर लेंगे। जैसे हम अपने ऊपर ही लें, अपने ऊपर लेते हैं कि अगर मैं इस दर्जे की स्मार्ट हूँ ना, नेचर स्मार्ट हूँ, तो मुझे 24 घंटे में से कुछ घंटे आउटडोर ज़रूर एक्टिविटीज़ में गुजारने चाहिए। वो एक लॉन्ग ड्राइव की सूरत में भी हो सकते हैं, शीशे खोल दें, जब ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे पड़ेगी, आपके बालों में पड़ेगी, तो आपको एक सुकून मिलेगा। कुछ लोग हैं ना, जैसे वो म्यूज़िक सुन के रिफ़्रेश होते हैं ना, आप ये फितरत के हल्के हल्के जो आपके साथ टच होंगे ना, इससे अपने आप को महसूस करेंगे। और आप इसको बच्चों में कैसे देखें ये भी नोट कीजिएगा। मैंने माओ से सुना है कि मेरा बच्चा बाहर जाके बड़ा खुश होता है। मैं कहती हूँ ये 1-2 साल का बच्चा है, इसने क्या खुश होना है, इसको क्या आता है। बट आप नोट करें कि रोते बच्चे को आप अगर खुली फिजा में ले जाएं तो वो भी खुश होने लगता है। क्यों? वो किसी चीज़ को फील कर रहे होते हैं, कुछ को नहीं होता। तो ऐसे लोगों को खिड़कियां खोल के मोटे कपड़े पहन लेने चाहिए, देखिएगा उनका मिजाज अच्छा रहेगा। यानी बस आप कह लें कि दे नीड नेचुरल लाइफ। गर्मी में एसी लगाकर अंधेरे कमरों में रहकर इनको मज़ा नहीं आएगा। इनको कब मज़ा आएगा? जब इनको स्वेटिंग होगी। अब स्वेटिंग होगी ना तो ये फ़ौरन फील करेंगे कि इस स्वेटिंग के बाद मैं रिलैक्स हो रही हूँ, मेरी बॉडी में से मिनरल्स निकल रहे हैं। यानी आप महसूस करें कि इनको ऐसा फ़ायदा होगा। और अगर आप मर्द हैं, एक ज़ाहिर आप ये इंटेलिजेंस हमें मर्दों में भी डिस्कवर करनी है, अगर आप मर्द हैं तो आपको कौन से प्रोफेशन लेने चाहिए जो ऑफिस में बैठकर कुर्सी मेज़ लगाकर कंप्यूटर पे काम करने वाले ना हो। दे शुड बी साइंटिस्ट, दे शुड बी जियोलॉजिस्ट। वो ज़मीन की तहों में छुपा हुआ ऑयल ढूंढें, वो माइंस में काम करें। दे शुड बी फार्मर, किसान बन सकते हैं, समझ गए। इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, नेवर, बिकॉज इनका माइंड वहाँ चलता नहीं। देखिए, एक बात आपने भी महसूस की होगी, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना, आपका माइंड उस पर बहुत चलता है। क्या आपने, मैंने नहीं देखा कुछ सिस्टर्स हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक होती हैं, आइडिया, बाज़ लोग बहुत अच्छी अच्छी यानी क्राफ्ट बना लेते हैं, है कुछ का खाना पकाने में बड़ा जेन चलता है, कुछ का केक बनाने में, उसकी ड्रेसिंग पे और उसकी जो ऊपर खूबसूरती है उस पर पड़ते हैं ना। यू शुड गो इन द सेम फील्ड जो आपके काम है। कुछ के कपड़े सीने में बहुत इंटरेस्ट होते हैं, तो बहरहाल ऐसे लोग अगर अपनी फील्ड में चले जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी किस्म के इंटेलिजेंस, मैं सिर्फ आपको खुलासा दे रही हूँ इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, वो ओवरऑल हम एंड पे देख लेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है नंबर स्मार्ट, लॉजिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। ये कौन होते हैं? जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है, नंबर्स, फ़ोन नंबर इनको फ़ौरन याद हो जाते हैं, एक दफ़ा अगर कहीं जाएंगे इनको उनका रास्ता याद हो जाएगा, है ना। और बचपन में भी आप देखिए कि अपने बच्चों को अगर आप देखें ना, असल में हमारे यहाँ ऐसे ही लोगों को बस स्मार्ट कहते हैं। बच्चों के बारे में माएँ कहती हैं एक दफ़ा में याद करते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये लोग बड़े होकर अगर अकाउंट्स में जाएं, दे शुड बी सक्सेसफुल अकाउंटेंट। ये चार्टर्स में चले जाएं, ये डिडक्शन में चले जाएं, ये बहुत कामयाब होंगे। यानी जहाँ मेंटल वर्क है, और अगर आप महसूस करके देखें ना, तो ये लोग डॉक्टर भी अच्छे बन सकते हैं। आप छोटा सा एक जुमला लिख लें, मीन मेख वाले काम इनको बड़े अच्छे लगते हैं, पॉइंट्स बाद में। आपने देखा होगा कुछ लोग हिसाब लिखते हैं ना, पूरा आना पाई जमा करके, अगर आपने उनको 100 पाउंड दिए हैं तो वो उसका एक एक पैसा जमा करके दिखा देंगे, एंड ऑफ द डे यहाँ से आया इतना, आया इतना खर्च हुआ। और कुछ ऐसे हैं कि आप उनको 50 रुपये भी, 50 पाउंड भी दे दें, वो कहते पता नहीं किधर गए, है ना ऐसे कुछ लोग। फिर उसके बाद तीसरी किस्म की और इंटेलिजेंस होती है हम सब इंसानों के अंदर, और वो कौन सी होती है? पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट कौन होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, लोगों के साथ बहुत खुश रहते हैं, घुलने मिलने वाले, समझने समझाने वाले, जहाँ जाएंगे उनके साथ फ्रैंक हो जाएंगे। आप में से कईयों को अपने हस्बैंड याद आएंगे, कहेंगे वो ऐसे ही हैं, ये पता नहीं कैसे सबसे दोस्ती कर लेते, मैं तो नहीं कर पाती। हाँ, यानी कुछ लोग होते हैं पीपल स्मार्ट, रिलेशंस बड़े अच्छे बनाते हैं, रैपो बन जाता है इनका एक दूसरे के साथ। ऐसे लोगों को अगर प्रोफेशन चूज़ करना है, सेल्समैनशिप। अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है ना, मतलब आप घर में नहीं भी है लेकिन आपके उस बच्चे या बच्ची ने आकर मेहमानों को डील भी कर लिया, उनसे बातें भी कर ली, उनको फील भी नहीं होने दिया कि अम्मी अब्बू घर पे नहीं थे, तो आप कह लीजिए कि इनको हमेशा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें लोगों से डील करना चाहिए। सेल्समैनशिप है, किसी जगह कमर्शियल्स में जाके अगर कोई बात करनी पड़ती है तो ये वहाँ फ़ायदा लेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से एक और इंटेलिजेंस होती है और वो क्या है? बॉडी स्मार्ट। बॉडी स्मार्ट कौन से होते हैं? कि जो अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांगली यूज़ कर सकते हैं। बस आप देखिए क्रिकेटर्स, बॉलर्स, स्पोर्ट्स में इनके अंदर नकल उतारने की भी बड़ी सहूलत होती है, और ये इस तरीके से लोगों को देखकर इस तरीके से बात कर लेते हैं कि वाकई आप हैरान हो जाते हैं इनकी शक्लबंदी पे कि ये कितने खूबसूरत तरीके से अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। बस आप देखिए किसी को आपके कुछ करेंगे कि बैठ के ही कर लेते हैं, अच्छा चलो क्या करना है, खड़ो चलो इधर बैठते हैं, आओ चाय पीते हैं। लेकिन कुछ लोग वॉक करने के माहिर और खुश होने के, आप बिल्कुल ये सारी बातें अगर मुश्किल नामों से निकालें तो आप अपनी फैमिली के 10 लोग पिक कीजिए, अपनी 10 कजन्स को पिक कर लें, आप देखेंगे ये सारी बातें जो आज आप शायद फर्स्ट टाइम इसका एक इंट्रो ही ले रहे हैं, आप बाद में कि हाँ ये इस तरह की स्मार्ट है। अच्छा, जो लोगों से बातें बहुत अच्छी कर लेता है, हो सकता है उसको कंप्यूटर को हाथ लगाते हुए डर लगे। कई लोग हैं ना कि भाई नहीं 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 मैं मशीनों से बहुत डरती हूँ। हमारे अपने ये सारे दावा वर्क में माशाल्लाह जो वॉलंटियर्स हमारे सामने आती हैं और जिनको हम वॉलंटियर फॉर्म फिल कराते हैं, तो उसमें 3-4 सफ़ों का उनका अपना प्रोफाइल होता है जिसमें उनके हॉबीज़ का पता चलता है, आपको मज़ा आता है कि नहीं, आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, आप रिलायबल हैं नहीं, आपको किस में मज़ा आता है, वो सारा येस नो करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि इनको क्या काम देना चाहिए, और 90% वो ठीक होता है, अच्छे तो सारे ही होते हैं, लेकिन आप उनको काम वो नहीं दे पाते जिसमें वो ठीक होता है। और याद रखिए आज बहुत बड़ा आलमी है, ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को अपने मुल्क के यंगस्टर्स और जो दूसरे लोग हैं जिनको वाकई अल्लाह ने बहुत सारी स्किल्स दी हैं, मैं उनके ऊपर लेके सोचूं तो आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नाकामियों की धूल में हैं क्योंकि उनको उनके इंटेलेक्ट के मुताबिक ज़िंदगी में प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनका कैरियर नहीं बना। बहरहाल एक और इंटेलिजेंस क्या होती है कि कुछ लोग इंसान की एग्जिस्टेंस, इंसान कैसे दुनिया में आया, क्या आया, इसका अंजाम क्या है, मौत क्या होती है, एकदम कैसे बंदा दुनिया से चला जाता है, जब चला जाता है तो उसका दुनिया से क्या ताल्लुक़ रहता है, इस पे बहुत गौर करते हैं। मसा आप देखिए कि फ़िलासफ़र्स वो कैसे इंटेलिजेंट है, किसी फ़िलासफ़र को हो सकता है नेचर से कोई मोहब्बत ना हो, बट वो बैठ के फ़लसफ़े घड़ता रहेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सूफीस, बुद्धास, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये लोगों से इस किस्म के मुजाहदे करते हुए कराते हुए आपको दिखेंगे। फिर एक इंटेलिजेंस होती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। अब उसने चूँकि काम किया है तो उसने म्यूज़िकल का इसको नाम दिया है, मैं इसको इस तरह ले लेती हूँ कि जिसका सुर बड़ा अच्छा होता है। आप देखिए आप अपनी पूरी टीम में से लोगों को देखिए, क्या कोई ऐसा नहीं है कि जो नात बड़ी अच्छी पढ़ता है, हर एक नज़म या नशीद पढ़ सकता है, हर एक की तिलावत में खूबसूरती होती है, नहीं होती ना, तो वो अल्लाह ताला ने बस उनको एक वो काम दी होती है। अब ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहिए, और आप देखिए कि ऐसे लोग फिर प्रोफेशनल स्पीकर्स हो जाते हैं, बड़े वोकल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा ही कोई काम लेना चाहिए कि जिसमें बोलने का काम है। टीचर, टीचर के पास क्या होता है, आपने कभी सोचा टीचर क्या देता है? नॉलेज? नहीं, नॉलेज तो बुक देती है, किताब में लिखा होता है नॉलेज, बोल देगी। टीचर जो है ना वो मोटिवेशन देता है। टीचर कौन है? उस्ताद किसको कहते हैं? जिसके पास जाकर आपको अपना इल्म थोड़ा लगे। उस्ताद कौन है? जो इल्म की प्यास जगा दे। उस्ताद कौन है? जो मोटिवेशन देता है। आप बताइए कि अगर आपके अंदर ये स्किल्स हों, यू शुड गो टू टीचिंग, चाहे वो कोई भी टीच करें, आप कुकिंग सिखाने लग जाएं। कुछ लोग आप देखिए दुनिया की कोई चीज़ सिखाएं या दीन की, वक्त का एहसास ही नहीं होता, और कुछ बोलने लगे कहते हैं ये ख़त्म होगा कभी, इतनी देर से बैठे हैं ये क्यों बोल रहे हैं। फ़र्क है ना, एक ही चीज आप एक पेज लिखा हुआ 10 लोगों को दें और आप कहें कि आप सबके 10-10 मिनट है, बारी बारी आइए, सच बताएं क्या सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी होगी? फर्क होगी? आप अपने 4 बच्चों में ढूंढिए, आपके बच्चों में से हर बच्चा स्कूल से आकर वो जो अपनी स्टोरियां सुनाता है उसका अंदाज एक ही होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो दैट मीन के ये भी एक किस्म की डिफरेंट खूबी है जो अल्लाह सुबहाना ताला ने उसको दी है। फिर इसके बाद एक और बड़ी इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट लोग कौन होते हैं? इसको इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये लोग अपने बारे में बहुत जानते हैं, वेरी सेंसिटिव पीपल, अपनी गलतियों को समझते हैं, अपने जज्बात को समझते हैं, अपनी ज़ात पर इनको बड़ा कंट्रोल होता है, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी नब्स पे हाथ रखा होता है इन्होंने। इनको एहसास होता है कि हम किसी का दिल ना तोड़ें। और आप देखिए कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी औरतों में खूबी होती है। मर्द कहते मैंने क्या कहा, अच्छा कोई बात कर जाए ना, मिसाल है कपल कहीं गया और कुछ लोगों ने बातें की, मर्द को कोई नहीं पता होगा किसी ने क्या कहा, तो बीवी कंधा चुकाएगी, देखा क्या कह गया आपको, ये सुना गया आपको, ये लगा गया आपको। और औरतों को ससुराल की बातों के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता लग जाता है कि ये बोल कहाँ से रही हैं, ये मेरी नन सोचती कैसी हैं, क्या करती हैं वैसा, यानी अपनी ज़ात पे बारे में देर वेरी मच सेंसिटिव। वो कहते हैं बस मुझे ना कोई कुछ कह दे। बहरहाल ये इंटेलिजेंस जो होती है बहुत अच्छी हो सकती है अगर ऐसे लोग अपना मुहासबा कर लें। अगर हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं ना, मसलन आप, मैं एक वो छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की बात मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे कि उनको पता ही नहीं होता था कि पीछे लाइनों में बैठे स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम पीछे लाइन में होते थे तो वो सर जब बोर्ड की तरफ लिखने के लिए कुछ करते थे ना, तो लड़के लड़कियाँ जो भी थे पीछे से दरवाज़ों से बाहर जाकर समोसे खाकर कुछ साथ लाकर चटनी के साथ पीछे वापस आ जाते थे, सर को कोई नहीं था पता चलता। वजह क्या, वो अपने हाल में मगन है। बल्कि मैं किसी के बारे में पढ़ रही थी कि एक कितने साल तक अब किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे बट एक बार भी उनको मौका नहीं मिला लेक्चर देने का। वो कैसे, जब उनका बोर्ड पे नाम आता था उनका लेक्चर है, क्लास में एक लड़का भी नहीं होता था। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कुछ उनको पता ही नहीं होता। और एक मैं और टीचर के बारे में पढ़ रही थी कि वो उनको पढ़ाने का इतना जुनून था कि जब कॉलेज में छुट्टियां हो जाती थी ना तो स्टूडेंट्स को पैसे दे दे के बुलाते थे कि छुट्टी वाले दिन तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और उनका पता नहीं क्या लंबा स्पैम लिखा था कि इतने सालों की अपनी जॉब के दौरान उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। तो ये अपना शौक होता है, ये डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। फिर एक और स्मार्टनेस होती है, पिक्चर स्मार्ट। पिक्चर स्मार्ट क्या होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है, किसी को एक नज़र देखेंगे फौरन परख जाएंगे, तायराना निगाह। मसला आप देखिए कि गहरी नज़र रखने वाले, आपको अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे। कुछ आंटी तो माशाल्लाह इतनी तेज़ होती हैं कि वो एक नज़र में पहचान जाती हैं, कुछ को तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहे हमारे इर्द गिर्द, अपने हाल में मगन। बट कुछ लोग सबकी खबर रखते हैं। हमारी ज़ुबान में ऐसी आंटीज़ को क्या कहते हैं, बीबीसी लंदन। अब आप लंदन वालों से बीबीसी वालों से माजरत के साथ, लेकिन आप देखिए बीज मालो, इधर जा उधर जा उधर से, यानी वो जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाली कैफियत होती है, एक्स्ट्रा क्लेवर। वजह के एक नज़र देखी परेशान है, उनके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, आप उनके सामने आके तो देखें, विद इन फ्यू मिनट्स वो पहचान लेंगे कि आप दुखी हैं, आपको छुपा रही हैं, आप बीमार हैं, या आप खुश हैं और आपकी खुशी छुपा रही हैं। कुछ को तो अल्लाह के हुक्म से पता ही नहीं चलता ना, वो कहते अल्लाह वाले हैं बड़े, अल्लाह लोग हैं जिनको क्या पता चलना है। लेकिन कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं, और बिलीव मी कि ये खूबी इतनी स्ट्रांग खूबी है, अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपने इसको नेगेटिवली यूज़ किया तो आप दूसरों का जीना धोबर कर देंगे। मैं फिर आप देखिए कि इंसानी रिश्तों में हमें ये सब कुछ नज़र आता है। आप और मैं इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं या जिस जंगल में हम आप और मैं इस दुनिया के अंदर हैं, आप देखिए कि वहाँ आपको हर तरह के बंदे से वास्ता पड़ना है। अब एक और है उसको लेकर फिर आप, मैं इनको इनकी सारी डिफरेंट डायमेंशन कहती हूँ। एक और कौन से होते हैं, वर्ड स्मार्ट। लफ्ज़ों के स्मार्ट बहुत सारे होते हैं, मसलन वही बात है कि उनके जुमले बड़े नपे तुले होते हैं, बात करने से पहले पूरी उसकी रिहर्सल कर लेते हैं, 3 मिनट दे दें वो 2.5 मिनट में अपनी बात पूरी कर देते हैं। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, माफियुज़ ज़मीर, एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है। मिसाल है कि कहीं किसी को साथ कोई बात का मौका आ गया तो वो ये नहीं कहते नाक साफ कर रहे हैं, रो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, जो मेरे दिल में है वो मैं आपसे कह नहीं सकती। आपने कभी कुछ लोगों को ज़रूर ऐसे सुना होगा, वो अपनी बात नहीं बता पाते, और औरतों में माजरत के साथ ये खराबी ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला ने इसको भी एक जगह कुरान पाक में सूरह ज़ुख़रुफ़ में पेश किया है कि वो औरत जो जेवरात में पलती है और बात करना पड़े, अपनी बात पेश करनी पड़े, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकती। कई सिस्टर्स हैं, फ़ोन करेंगी 20, 25, 30, 50 मिनट बात करके फ़ोन बंद होगा, विद इन 1 मिनट दोबारा कॉल आएगी, वो जिस बात के लिए फ़ोन किया था वो तो कहा ही नहीं है। होता ऐसा कि नहीं होता? और कुछ है, घड़ी देख लें आप, आजकल घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस छोड़ दें, आप खुद अपने आप को पहचानें। बल्कि ये जो बात है मैं कहने लगी हूँ ये हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आजकल हर बंदा वक्त की कमी का शिकार है, वो ये सोच रहा है कि मुझे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो आप व्हाट्सएप या वाइबर या जहाँ भी आप रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ते हैं ना, आप अपने और मुख्तलिफ लोगों के मैसेज सुन लें, बिलीव मी, आप हैरान कुन हद तक इस बात की गवाही देंगे कि कुछ लोग 3 मिनट के अंदर भी दो बातें भी काम की नहीं करते, और कम से कम 7 से 8 बार रिपीट करते हैं, और कुछ 30-40 सेकंड का मैसेज देकर ऐसे बात करते हैं जैसे वो किसी किताब में से देख के पढ़ रहे हैं। होता है ऐसा? बेहतर कलाम कौन सा है? दल्ला व कल्ला। नबी सल्लम के बारे में आता है कि आपका कलाम कैसा था? कल्ला, मुख्तसर था, और दल्ला दलील वाला था, कंसाइज्ड, और जिसको आप कह लीजिए कि जामियत थी। कुरान पाक की तो अपनी एक खूबी यही है कि थोड़े लफ्ज़ों में अपनी बात को पेश करना।